Om Shanti. Good morning. नाश्ता किया है कि नहीं, भूख खाया है कि नहीं? Om Shanti. दुनिया में भी कुमारियों को स्वरक्षा के लिए आजकल कराटे सिखाया जाता है, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि रक्षा जरूर चाहिए, लेकिन फिजिकल रक्षा के साथ इंटरनल रक्षा और इंटरनल रक्षा के साथ फिजिकल रक्षा चाहिए। हमारे ऋषि मुनि द्वापर युग के अंत में जंगलों में रहते थे। कहीं पर कोई शास्त्र इतिहास में सुना कि कोई ऋषि को कोई शेर ने मार दिया या सांप ने काटा और मर गया, तो उनकी जो साधना थी वो उनकी रक्षा का बहुत बड़ा पावरफुल माध्यम था। आज इसी विषय को एक अलग रूप से हम सबके बीच स्पष्ट करेंगे परम आदरणीय सरला बहन जी। आज का विषय है स्वरक्षा का साधन, दिव्यता एवं रूहानियत। तो चलो, आज तो पहला सेशन है और हमें हरेक को इस प्रकार के स्वरक्षा की इंडिविजुअल लेवल पर आज भी और आज से 5 साल भी आवश्यकता पड़ने वाली है। इस क्लास को ऐसा सुनना कि हमारे आजू बाजू एक रक्षा का कवच अलौकिकता का आज से ही बनना शुरू हो, और उसके लिए जो भी टिप्स आज मिले हो सके तो आज से ही हम उसको प्रैक्टिस में रखने की कोशिश करें। तो परम आदरणीय सरला बहन,
ओम शांति। आप सब कैसे हैं? कैसे हैं? जो कहते हैं बहुत अच्छे वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा किसको कहते हैं? हाथ तो खड़ा किया, अब बहुत अच्छा किसको कहते हैं? दीजिए जवाब, बोलिए। एक जन खड़ा होकर के बोलो, बोलिए। जो अंदर बाहर दोनों तरफ से सेफ हो, अच्छा, उसको बहुत अच्छा कहते हैं। बहुत अच्छा माना जो हमारे बाबा ने दिनचर्या बनाई है, उस दिनचर्या में श्रीमत प्रमाण चलना, उसको हम बहुत अच्छा कहते हैं। चलते तो हैं सभी, लेकिन श्रीमत प्रमाण चलना, श्रीमत प्रमाण चलने में जो कर्म है वो श्रेष्ठ होते हैं, और उन श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम स्वरूप हम अपने आप में, जो आपने कहा ना बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छेपन की महसूसता का अनुभव करते हैं। फिर से मैं आज अपनी बड़ी दीदी को याद करती हूं, हमारी दीदी मनमोहिनी। श्रीमत दीदी के जीवन का डबल अंडरलाइन किया हुआ धारणामूर्त गुण था। श्रीमत की इतनी पक्की थी, जो बाबा ने कहा है बस वही करना है। एक बार दीदी अपना अनुभव सुना रही थी, दीदी को थोड़ा मोशन लूज हो गया, तो बाबा ने खिचड़ी बनाई और नींबू का अचार, तो बाबा ने खुद सामने बिठा करके कहा कि बच्ची इतनी खिचड़ी खाओ नींबू के अचार के साथ तो ठीक हो जाएगा। तो दीदी ने कहा, बाबा मैं अचार नहीं खाती हूं, क्योंकि बाबा ने पहले मुरली चलाई थी कि अचार तामसिक है तो तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। तो दीदी कहती है, बाबा इतना अच्छा मुस्कुराया और मुस्कुरा करके कहता है, बच्ची कौन खिला रहा है? जिसने श्रीमत दी वही तो खिला रहा है ना। तो दीदी ने बाबा को कहा, बाबा सॉरी। अनुभव बताया, श्रीमत किसको कहते हैं? बाबा ने जिस परिस्थिति के अनुरूप जो राय दी, जो मत दी, वो श्रीमत है। और ऐसी श्रीमत पर जो आत्माएं चलती हैं, वो धीरे धीरे अपने में दिव्यता को भरती जाती है। आप सब बाबा की बच्चियां अपने आप को ब्रह्मा कुमारी समझती हैं? ब्रह्मा कुमारी समझती हैं? सभी ब्रह्मा कुमारी हैं? सभी हैं या बनेंगी? ब्रह्मा कुमारी बनेंगी या ब्रह्मा कुमारी हैं? हैं। सबको पक्का है? सबको पक्का है? थैंक्स। अब हम चलते हैं अपने विषय की तरफ। अगर आपकी ये धारणा पक्की है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, तो ब्रह्मा कुमारी माना ही शिव शक्ति, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा मां के द्वारा मुझे अडॉप्ट किया है। ये तो हमें पक्का है ना। हम अडॉप्ट की हुई ब्रह्मा मुख वंशावली शिव शक्तियां हैं। जागृति बहन ने बात की कि आज की दुनिया में सुरक्षा के लिए बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, कराटे सिखाते हैं, और आजकल महिला सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट भी जागरूक हुई है, बहुत नए नए कायदे कानून कि नारियों की सुरक्षा हो। जगह जगह आप भी देखते होंगे रोड पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इस नंबर पर आप डायल करें और ये आपको सुरक्षा मिलेगी। वहां भी भय कब पैदा हुआ? एक समय था जो नारी बलवान थी, नारी शक्ति थी, आज नारियों को सुरक्षा के लिए अधिकार चाहिए। वो तब हुआ जबकि नारी के व्यक्तित्व में गिरावट आई। आज की नारी देह अभिमान के वशीभूत, हम देखते हैं ना बाहर की महिलाओं को, उनका जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो लोगों की वृत्ति को विकृत करता है, तो भय पैदा हुआ। भय हुआ तो सेफ्टी के साधन बने, लेकिन हमारे बाबा ने स्वरक्षा, स्व अर्थात आत्मा, उसकी रक्षा के लिए हमें पहला आत्मा का पाठ पक्का कराया है। मैं कौन हूं, अब पाठ को हमने कहां तक पक्का किया, उसमें हम सब हर एक अपने अपने पर हर एक डिपेंड करता है, लेकिन बाबा ने जरूर पढ़ाया है। और मुझे याद है हम जब दादियों के साथ में रहते थे तो दादियां ये सुनाती थी कि बाबा ने शिव शक्ति कंबाइंड का ऐसा अभ्यास कराया, और बाबा हर कार्य कराता था, फिर चेक करता था कि बच्चियों में भय है। रात को पहरा देने का काम बाबा ने दिया, और एक बार बाबा ने परीक्षा की, बाबा ने पेड़ के ऊपर में किसी भाई को बिठा दिया। अब जब वो बहन लकड़ी और सीटी लेकर के उधर से निकली, उसने सीटी बजाई, उसने ऊपर से कुछ गिराया और पेड़ को हिलाया, उसने टॉर्च लगाई, कौन है, डरी नहीं और वहीं खड़ी रही, देखती रही कि आखिर है क्या, कोई जानवर है। फिर वो भाई नीचे उतरा। कहने का तात्पर्य, फिजिकली भी बाबा ने भय से मुक्त किया, और भय मुक्त होने का जो अभ्यास कराया, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं। अकेले को भय आता है, मेरे साथ में कौन है, मैं कंबाइंड किसकी हूं, शिव की शक्ति हूं, हम शिव और शक्ति कंबाइंड हैं। अब ये कवच बाबा ने हमें पहना दिया, इस सुरक्षा कवच को पहने रखना ये किसका काम है, हमारा काम। हम इस कवच को पहनने में चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, और जब हम ये भूल जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारी पन की भी कई बार विस्मृति हो जाती है। आप कॉलेज में पढ़ने वाली कुमारियां, जॉब पर जाने वाली बहने, थोड़ा सा आप अपने अंदर में झांक करके देखो कि जिस समय आप कॉलेज में जाते हो तब आपका ये रूहानी व्यक्तित्व तो है, आपको ये सुरक्षा कवच पड़ा हुआ है, बहुत सारी हमारी बहनें ये जवाब देती हैं। अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो कॉलेज की ड्रेस चीज अलग है, यूनिफॉर्म वो अलग चीज है, लेकिन जैसे दूसरा स्टूडेंट जिस ड्रेस को पहनते हैं, आज की दुनिया की ड्रेसेस तो आप समझते हैं ना, वो ड्रेस मैं ब्रह्मा कुमारी पहनूं, पहन सकती हूं? नहीं। भले आप कॉलेज पढ़ो, ये भगवान की श्रीमत है, लेकिन कॉलेज जाते हुए भी आपकी ड्रेस व्हाइट नहीं पहन करके जाओ, वो मैं नहीं कहती हूं, भले कलर्ड पहनो, बाबा भी छुट्टी देता है, लेकिन मर्यादा युक्त तो होनी चाहिए। मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, समझो आपके सामने अभी यहां मैं क्लास कराने बैठू, सिर्फ हाफ स्लीव का ब्लाउज पहन करके बैठू, सिर्फ आपको संकल्प चलेगा क्यों ये बहन जी आधी बाजू का पहन करके बैठी है, इनको किसने बोला नहीं? क्यों आपको महसूस हुआ? क्योंकि इस लाइफ की ये मर्यादा नहीं है, ये मेरी ड्रेस नहीं है। आपको आश्चर्य लगा, ऐसे ही आप बच्चियां जब कॉलेज में इस मर्यादा के विरुद्ध ड्रेस पहन करके जाती हैं तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। वहां आपको जरूर भय पैदा होगा, किसी की भी आपके लिए वृत्ति खराब हो सकती है। अपनी रक्षा के लिए पहला हमेशा शिव शक्ति समझो, ये अभ्यास करो। जो भी मानसिक कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को समाप्त करो शिव की शक्ति से। कोई भी प्रकार का भय, कोई ऐसा सोच सकता है, कोई ऐसा कर सकता है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, हमारी डिक्शनरी में हो सकता है शब्द है ही नहीं। मेरे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि समर्थ साथी का माइंड है। मन के अंदर कमजोरी के संकल्पों को इस स्मृति से भस्म करो। मैं कॉलेजियन कुमारी हूं नहीं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, आज भी कई हमारी बहनें हैं जो कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी जाती हैं, यही फुल ड्रेस नहीं, समर्पित नहीं है, घर में रहती हैं, लेकिन फुल ड्रेस। उनका प्रिंसिपल, उनका स्टाफ भले मजाक करे, लेकिन अभी सबको ख्याल आ गया है कि नहीं, ये तो इसी ड्रेस में रहने वाली है। किसकी हिम्मत नहीं होती है जो उसकी तरफ आंख उठा करके देखे। इस ड्रेस में ये ताकत है। आप सब भी अगर आपके पास ऐसे कोई ड्रेसेस हैं तो आज मन से संकल्प करो, मैं इस प्रकार का कोई भी ड्रेस जिससे हमारा बदन दिखाई देता हो, मैं स्पष्ट बोलती हूं, मैं नहीं पहनूंगी। हमारे बाबा ने इतना हाथ और इतना गला बस, और कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा लगता है ना? जैसे यहां पर आपने हाथ खड़ा किया ब्रह्मा कुमारी, तो आप उस ड्रेस में हो ना। और घर जाने के बाद जब आप कॉलेज जाती हो, तब टाइट जीन्स पहनना, ऊंचे ऊंचे टी शर्ट पहनना, ये ब्रह्मा कुमारियों का ड्रेस नहीं। या ये रूहानी पर्सनैलिटी नहीं है, उससे आपका रूहानी व्यक्तित्व नहीं झलकेगा। किसी की भी, किसी को भी देख करके एक लौकिकता का आभास होगा। ये आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, तो हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा किया है तो इसका पालन करना, और पालन करेंगे तो बाबा की 101% आपको मदद मिलेगी। क्योंकि ये ड्रेस ही हमारी रूहानी पर्सनालिटी को सिद्ध करता है। इसी ड्रेस के अंदर मर्यादा में दूसरी एक बात आती है, रूहानियत में हमारा हेयर स्टाइल। बाबा ने जो बनाया है खराब लगता है? नहीं लगता है। इधर से ऐसे कर दिया, इधर से ऐसे कर दिया, यहां भरा दिया, यहां कुछ लगा दिया, यहां लटका दिया। अभी मैं बोल रही हूं तो आपको हंसी आ रही है, और जब आप लटका करके निकलते हो तो बाबा को हंसी आती है कि देखो ये बक्कल वाली ब्रह्मा कुमारी जा रही है। आप जैसे हम भी भट्टी में आए, तो हर एक पहले तो वही बाल वाल तो होते हैं ना। तो दादी जानकी ने क्लास कराया मधुबन में, 70 की बात है, 1970 की, तब भट्टी की थी। तो कई बहनें ना ये साइड पर यहां निकालती थी मांग, राइट बीच में नहीं निकालती थी। तो दादी ने कहा सब बीच में निकालना कल। तो कई बहनों ने कहा निकलती नहीं है, किसने का सिर दुखता है, माथा दुखता है। जब दूसरे दिन दादी जान की क्लास में आई ना, तो कंघा लेकर के आई, और इतना प्यार से, मीठी आत्मा इधर आओ, ऐसे प्यार करे, लाओ दादी तुम्हारी पाती पाटती है। ये दादी निकाल के देगी, पाती बोलती थी दादी। और दादी ने निकाला तो बाकी सबने क्या हो किया होगा, दादी से निकलवाई होगी? नहीं निकलवाई। ठीक है दादी, कल से हम ये निकालें। किसी भी प्रकार का आकर्षण अगर मुझे है, वो बॉडी कॉन्शियस है, और दुनिया जो है वो तो जी ही बॉडी कॉन्शियस में रही है। तो बॉडी कॉन्शियस को बॉडी कॉन्शियस खींचता है। वहां आप कितना भी बोलो बाबा मेरी रक्षा करे, मैं शिव शक्ति हूं, नहीं। कर्म में परिवर्तन चाहिए। शिव शक्ति माना शिव शक्ति की यूनिफॉर्म वाली। ये भी तो मुझे विचार आया ना, ये इसकी जगह ये हेयर स्टाइल मेरा, मुझे अच्छा लगता है। हमारी दादियों को देखो, जितनी ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखो, सबका एक ही हेयर स्टाइल है, सबसे पहले स्व की रक्षा के लिए स्व को इन भौतिक आकर्षणों से मुक्त करो। इसी के अंदर तीसरी एक और चीज आती है, वो है हमारा चलना और बोलना। बाबा हमेशा कहता है तुम्हारी चाल कैसी होनी चाहिए, कैसी? फरिश्तों जैसी तुम्हारी चाल होनी चाहिए। और फरिश्ते कैसे होते हैं? हड्डी मांस नहीं होता है, लाइट का कार्व होता है, आकृति दिखाई देती है। और उनकी चाल जिसके अंदर में आवाज नहीं होता है, फरिश्ते बड़ा धीमे धीमे चलते हैं, आवाज नहीं करते हैं। आप अपने को पूछो, जब आप अपने कर्म क्षेत्र पर हो, कॉलेज में हो या जॉब पर हो, आपकी चाल के अंदर वो दिव्यता है? है? बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, चल इधर रहे हैं, देख उधर रहे हैं, शक्तियों की चाल कैसी है, फरिश्तों की चाल कैसी है? अरे आप जाओ आराम से कॉलेज, ये सुरक्षा का कवच पहना, बाबा की याद में ये शक्ति जा रही है जो सामने वाले को, देखने वाले को लगे कि नहीं ये व्यक्ति कुछ न्यारी है। संकल्प जरूर चले उसे आपको देख करके, लेकिन लगे ये न्यारी है, इसके पास कुछ है, ऐसा अनूठा कुछ इसका व्यक्तित्व तो है, आपको वो प्रभाव डालना है। न कि फ्रेंड सर्कल के अंदर में जैसे वो चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, नखरे से देखना, नखरे से चलना, दादी जान की एक शब्द बोलती है, लटकना, अटकना और भटकना। हम जब लटक रहे हैं तो कोई हमारे में अटकेगा ना? अगर ये सारी बातें हमारे व्यक्तित्व में है, रूहानी हमारा व्यक्तित्व है, तो आपको किसी की भी रक्षा की जरूरत नहीं है। आप महसूस करते हो इस बात को, समझ रहे हो कि ये राइट है? तो अब अपने आप को ये यहां से इस भट्ठी से पढ़ा दो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, मैं बाबा के डायरेक्शन प्रमाण पढ़ जरूर रही हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं तो ब्रह्मा कुमारी जीवन की सर्व मर्यादाओं में मुझे चलना है। अगर आपके ऊपर कोई कमेंट करता भी है, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, उसकी चिंता नहीं करो। चिंता किसकी करो? भगवान की। लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल बुद्धू जैसी दिखाई देती है। कई लोग बोलते हैं फिर लोग हमें बुद्धू समझेंगे। अच्छा है, बुद्धू समझेंगे तो दृष्टि तो नहीं जाएगी। बुद्धिवानों का बुद्धिवान वो तो मुझे बुद्धू नहीं समझ रहा है, उसकी दृष्टि में मैं बरोबर हूं, बस। लोगों की चिंता मत करो, लोग आप ब्रह्मा कुमारी बन करके ये ड्रेस पहनेंगे तो भी बोलेंगे, और आप ब्रह्मा कुमारी ड्रेस में जाएंगे तो भी बोलेंगे। लोगों का काम क्या है बोलना, कहते ना ये 2.5 इंची की जवान ऐसे भी चलती है, ऐसे भी चलती है, इसका काम चलना है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है श्रीमत पर चलना। तो अपना रूहानी व्यक्तित्व बनाओ, भौतिक आकर्षणों से, इस शरीर की सजावट से अपने आप को मुक्त कर दो। ये मेरा अलौकिक जन्म है, ये प्रभु पिता की देन है। हम कहते हैं ना तन मन धन सब किसका है, बाबा का है। इस तन पर बाबा का अधिकार है क्योंकि मैं उसकी बच्ची बनी हूं। लौकिक में चाहे मां बाप को खुश करना है, परिवार को ठीक रखना है, वो निमित्त मात्र हूं। मैं उनकी सेवा अर्थ वहां रही हूं, तो रूहानी व्यक्तित्व के अंदर निर्भयता है। क्योंकि स्व अर्थात आत्मा वो निर्भय निर्वैर है, ये आत्मा का गुण है। इसको बार बार अभ्यास से अनुभूति में लाओ। तो ना व्यक्ति प्रभावित करेगा, ना वातावरण प्रभावित करेगा, ना किसी प्रकार के स्थूल जो छोटी मोटी चीजों से डर लगता है उससे आपको डर लगेगा। हम लोग की जब भट्टी चल रही थी, जिस भट्टी की मैंने पहले आपको बात सुनाई दादी जानकी की, तो एक दिन दादी चंद्रमणि का क्लास था, तो उन्होंने निर्भयता के ऊपर क्लास कराया। मुझे बोलते बोलते अभी वो याद आया, तो दादी को कहा कि दादी ऐसे कोई भय नहीं लगता है। एक बहन ने कहा मुझे ना इविल सोल का बड़ा डर लगता है। क्या दादी बोलती थी, दादी ने कहा अरे तुम ये 5 तत्व वाली उस 3 तत्व वाले शरीर से तुम डरती है, तुमको तो ये 5 तत्व का पुतला है, सूक्ष्म बॉडी 3 तत्व का ना, उन 3 तत्व वाले से तुम डरती है। दादी ऐसे एक्शन करती थी, उसकी हिम्मत हो सकती है जो हमारे सामने में आए। भय का संस्कार आपकी रूहानियत को खत्म करेगा। भयभीत चेहरा कैसा होता है, किसी भी शक्ति के चेहरे को आपने भयभीत देखा, देखा असुरों के ऊपर ऐसे खड़ी हुई, उसे भय है ही नहीं क्योंकि शिव उसका साथी है। और खुद शक्ति है। जब तक हम अपने आप को कुमारी समझते हैं, कुमारी माना ही कोमलता, कुमारी माना कमजोरी। और कुमारी से भी नीचे अगर आप उतर जाते हो, अपने आप को लड़कियां समझते हो, तो वो और नीचे के स्टेज। मैं ना लड़की हूं ना कुमारी हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी शिव शक्ति हूं। तो हम जब इस रूहानियत में आ जाते हैं तो इविल सोल्स भी हमें नहीं डरा सकती, वो भय भी हमारे में नहीं आ सकता है। डर लगता है आप में से किसको? इतना छोटा सा कॉकरोच आ जाएगा ना, सारे उछलेंगे। शक्तिपना भूल जाता है। पढ़ाओ अपने आप को, हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करो ज्ञान से। हर गुण के अंदर ज्ञान की शक्ति भरो, तब दिव्यता आएगी। केवल गुण नहीं, जैसे समझो किसी के अंदर में मीठा स्वभाव बड़ा अच्छा गुण है, किसी का शांत रहने का नेचर अच्छा नेचर है, लेकिन अगर उसमें ज्ञान की शक्ति नहीं है, तो मम्मा हमेशा ये कहा करती थी, वो अगर मीठा है और ज्ञान नहीं है तो मीठे को चींटियां खा जाएंगी। तो गुण में ज्ञान की शक्ति से दिव्यता आती है। समझा क्या करना है? मैं समझूं मेरे में तो बहुत नम्रता है, मैं तो सबके साथ बहुत मेरा मीठा स्वभाव है, और ज्ञान उसमें भरो, केवल शांति होगी तो भी लोगों को आपसे डर लगेगा, ये तो बहुत शांत रहते हैं, इसके पास नहीं जाओ। गुण में ज्ञान भरने से बैलेंस आ जाता है, और वो बैलेंस हमारी सेफ्टी का साधन है। तो अपने आप में दूसरी बात ये निर्भयता की, ना हमें व्यक्ति का भय है, क्योंकि बाबा ने हमें ये पढ़ाया है, बच्चे तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, हर रोज बाबा मुरली में कहता है। तो मैं ऊंचते ऊंच हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो दोनों बातें इसके अंदर आएंगी। इस स्मृति से एक तो आपकी रूहानी पर्सनालिटी बनी रहेगी, कोई मेरे जैसा नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं। और दूसरी बात, वो एक रूहानी खुमारी नशा जिससे आपको आकर्षण नहीं होगा, ऐसे अपने आप में चेक करो। मुरली को सुन तो लेते हैं हम, सुनने के बाद समझ भी लेते हैं, लेकिन ज्ञान को समझ तक नहीं रखना है। समझ को चिंतन से स्वरूप में लाना है। जब तक स्वरूप में नहीं आता है, तब तक आपको अपने में कमजोरी महसूस होगी। और स्वरूप तक पहुंचने के लिए आपको लगातार पुरुषार्थ में लगे रहना पड़ेगा। क्योंकि कई बार रिजल्ट नहीं दिखाई देता है तो पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं। इतना मेहनत करते हैं फिर भी नहीं होता है, क्या थकते हैं? एक तो थको नहीं, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो जमा हो रहा है। समझो आपने लक्ष्य रखा है, रोज मुझे आधा घंटा बाबा के सामने योग करना है। मैंने जो शुरू में अभ्यास किया, नहीं लगता था, योग करना नहीं आता था, भले नहीं लगा लेकिन अंदर में होता था, एक बैठने का संस्कार तो पक्का हो रहा है ना, बेनिफिट तो है ना। छोड़ो नहीं, बैठते 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 कल लगेगा। तो स्वरूप तक अपने आप को पहुंचाना है। अब लक्ष्य है आपका, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने से पहले एक भय स्थान जो कुमारियों के जीवन में आता है वो है संग। जो दिशा बदल देता है और धीरे धीरे वो संग आपके इस रूहानी व्यक्तित्व को खत्म कर देता है, आपको पता नहीं पड़ता है। आपको लगता है चलो आज इसके साथ पिक्चर देख लिया, उसमें क्या है, देख लिया, फ्रेंड्स के साथ बैठ करके इधर की उधर की बात कर ली, इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसी में सब कुछ है। माया क्या करती है, पहले इतना सा पकड़ती है और फिर यहां से पकड़ लेती है। तो आपने ये तो सहज पकड़ने दिया, यहां तक पकड़ा तब भी आपको पता नहीं पड़ा, यहां पकड़ा तब भी पता नहीं पड़ा, अब जब यहां पकड़ में आ गए और जकड़ गए तब आपको पता पड़ा कि ये तो संघ ने नुकसान कर दिया। इसलिए रूहानी पर्सनालिटी बनाने के लिए आपको हमेशा संघ का ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं पहले से एक शब्द बोलती आ रही हूं उसी को फिर आपको स्मृति में लाना पड़ेगा, मैं शिव की शक्ति हूं, मैं उसके संग में रंगी हुई आत्मा हूं। आप जब ब्रह्मा कुमारी हो, आपके संग का रंग आपकी फ्रेंड्स को लगना चाहिए। वही होना चाहिए ना, या उन कमजोर आत्माओं का रंग आपको लगना चाहिए। तो अगर उनका रंग लगा, माना मैं कच्ची हूं तो उसका पक्का रंग मेरे को लगा ना। इस संग की हमेशा संभाल रखना, फ्रेंड से भी और फ्रेंड के साथ में अध्ययन से भी, पुस्तकें कोई भी इस प्रकार की पुस्तकों का वाचन अध्ययन नहीं करना है। हमारे साथ में एक स्टूडेंट थी, वो पढ़ती थी कॉलेज लाइफ में, उसको नॉवल पढ़ने का शौक हो गया। क्लास में टीचर लेक्चर दे रही है, पढ़ा रही है, वो लास्ट बेंच पर बैठी हुई नॉवल पढ़ती रहती थी। और ऐसा रस दिन में कितना मोटा मोटा नॉवल होता है, जब तक पूरा ना हो वो कहती मुझे खाने की भी इच्छा नहीं होती, फिर परवशता। हमारे बाबा ने सबसे अच्छा खुराक हमें सुबह सुबह मुरली दे दिया है। आप मुरली को देखो तो क्या मुरली के अंदर नहीं है, हर धर्म की नॉलेज है, हर व्यवहार की शिक्षा है, हर स्थितियों का ज्ञान है, कैसे आप ऊंची स्थिति बनाओ, हर बात की समझ उस मुरली के अंदर है। तो किसी भी प्रकार के संग से, जिसको बाबा को संग कहता है, मुझे अपने को सेफ रखना है, जिससे मेरा रूहानी व्यक्तित्व बढ़ता रहे। ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो उस आयु में पता नहीं पड़ती हैं, और हम चलाते हैं, लेकिन उसका फिर परिणाम बाद में भयंकर आता है। और आप सब तो कह ही रहे हो हम ब्रह्मा कुमारी हैं, कोई भी प्रकार का वो लक्ष्य अगर किसी को किसी कारण से नौकरी करनी पड़ती है, कारण से घर की परिस्थिति है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको भी आप श्रीमत समझ करके बड़ों की आज्ञा और राय अनुसार करो। मेरे जो जीवन का लक्ष्य है, अगर मुझे बनना है तो बनने के लिए अभी से ही, जब आप पढ़ रहे हो, इसी अध्ययन काल से उन मर्यादाओं को जीवन में धारण करते चलो। तो अगर अभी का ये अभ्यास आपका शुरू होगा तो जिस समय आप अपनी स्टडी को पूरा करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तो तैयार हो गई ना, आप उसी लक्ष्य से पढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे ना। जो संग बुद्धि को भ्रमित करता है, उससे बुद्धि को भ्रमित नहीं करना। मैं कल कहा था ना एक बात के, किसी ने कह दिया भाई ऐसा होता है और मैं अपने जीवन का लक्ष्य बदल दूं, नहीं, वहां पर नॉलेज का उपयोग करो। हर आत्मा के कर्म, हर आत्मा का हिसाब किताब वो अलग अलग है ना। किसी का हिसाब किताब किसके साथ में कड़ा है तो कुछ पूर्व जन्म का है ना। अब मेरा हिसाब किताब कड़ा नहीं है और मैं उसके संग में आकर के अपने इस व्यक्तित्व को डाउन करूं कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा हो गया, तो हमको हमेशा दादी कहती थी अपनों से ऊंचों का संग रखना चाहिए, समान का भी नहीं, वो तो दादी कहती तेरे जैसा है तो तेरे जैसा बनाएगा। हमेशा ऊंचों का संग करो, बड़ों का संग करो। और सचमुच में मैं अपने अनुभव से ये बात कह सकती हूं कि बड़ों के संग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो संग का रंग ऑटोमेटिकली हमारे हर कर्म को चेंज करता है। क्योंकि उन बड़ों में वो पावर है, उनकी उस प्यूरिटी की पावर से हमारी कमजोरी दूर होती है, हमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। और अगर आपने संग ही कमजोर का कर लिया तो क्या होगा, पहले ही कमजोरी और कमजोरी आई। फिर मालूम क्या कहते हैं, मेरे ना इसके साथ संस्कार मिलते हैं, मुझे ना इसके साथ में ये करना अच्छा लगता है। संस्कार मिले अच्छी बात है, मिलकर के सेवा करो अच्छी बात है, लेकिन जिससे मिल रहे हैं उसी के संग में मैं रहूं ये गलत बात। संग मेरा उन बड़ों का होना चाहिए। और कभी भी बड़ों से डरना नहीं चाहिए, ये बात पक्की रखना। बड़े हमेशा बड़े हैं। अगर आपकी किसी धारणा के लिए या किसी कमजोरी के लिए उन्होंने आपको लड़ा बोला, आप डरो नहीं। पहली बात तो लड़ते नहीं हैं, ध्यान पर अगर देते हैं तो उनकी उन श्रेष्ठ भावनाओं को आप सोचो कि ये मुझे सुधारने के लिए कितनी ऊंची भावना रखते हैं। अगर आपने उनकी उस राइट भावना को समझ लिया तो आपको कभी भी भय नहीं आएगा, आप कभी बड़ों से दूर नहीं होंगे, उसी समय आपको प्यार आएगा। और यही प्यार आप में रूहानियत पैदा करेगा, भावना को, उस रूह की, उस आत्मा की भावना को समझा, ये रूहानियत है। और बाहर का रूप देख लिया कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे से ये चीज टूट गई थी तो ऐसा बोल दिया था, अब मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, डरो नहीं। यही संग, जैसे बाबा ऊंचे से ऊंचा है उसका संग हमें ऊंचा बनाता है, ऐसे बड़ों का संग भी हमारी इस रूहानी पर्सनैलिटी को बनाने में हमें मदद करता है। और मैंने तो आज दिन तक सच में कभी पुरुषार्थ नहीं किया है, इन बड़ों की दादियों की दुआओं ने मुझे आत्मा को खूब आगे बढ़ाया। आज दिन तक भी दादियों का संग है, पहले दिन से, जब से यज्ञ में पांव रखा है तब से। किसी भी दादी से मुझे डर नहीं लगा, लेकिन जब मैं आई यज्ञ में तब मुझे भी कहा, किसी ने मुझे बोला यीशु दादी के पास नहीं जाना, वो बड़ी सीरियस रहती है। किसने कहा बड़ी दीदी के पास नहीं जाना, दीदी बड़ा स्ट्रिक है। किसी ने कहा लच्छू दादी से बात नहीं करना, वो छोटी छोटी बात दीदी को जाके सुना देती है। अलग अलग मुख, अलग अलग बातें, लेकिन हम हमेशा दादियों के सामने रहे, उनके बिल्कुल नजदीक रहे। तो आज दिल से थैंक्स निकलता है कि उनके संग ने आज एक एक रग के अंदर में इन दादियों की पालना बह रही है, याद आता है कि नहीं ये सिखाया है, ये ही तुम्हें करना है। इन्हों की जो रूहानी पर्सनैलिटी है वो तुम्हारी होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आता है। तो अपने आप को कभी ऐसे कमजोर के संग में नहीं ले जाना। ये संग आपको थोड़ा समय के लिए अच्छा लगेगा, इसमें भी आनंद आता है, किसकी बात करने में, इसकी इधर की उधर की वो सब बातों में इसको कानों को रस पड़ता है, आत्मा को अच्छा लगता है, लेकिन वश नहीं होना कि ये तुम्हें भले अभी अच्छा लग रहा है लेकिन तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी रूहानी पर्सनैलिटी को खत्म करेगा। खुद को पढ़ा देना, और कोई भी कमी कमजोरी जैसे आपको महसूस होती है फट से उसको वहां ही खत्म करो, बढ़ाने के बाद खत्म करने में समय जाता है, और जो विकर्म का बोझ चढ़ जाता है उसको खत्म करने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बाबा ने यज्ञ के अंदर में सबसे सहज उसकी विधि रखी है, जिस समय जैसे आपको महसूस हो बाबा के सामने जाकर के बाबा को सॉरी बोलो। सॉरी बोलने का मतलब नहीं दिन में 10 भूले करती रहूं और बाबा के आगे जाकर के बैठूं और बाबा को बोलूं बाबा सॉरी, नहीं, महसूसता के साथ में बाबा को कहो बाबा सॉरी, आज मेरे से इस मर्यादा का उल्लंघन हुआ, आज इस श्रीमत का उल्लंघन हुआ, सॉरी, और वहीं उसको चेंज कर दो तो जल्दी खत्म होगा और साथ में आपको बाबा का प्यार मिलेगा कि बच्ची ने सच्चाई से इस बात को महसूस किया है। बाबा को आप उसी प्यार से देखो, सचमुच बाबा एक एक संकल्प को सुनता है, एक एक दिल की धड़कन उसके पास तक पहुंचती है। ये कहने की बातें नहीं है लेकिन ये आपका अनुभव होना चाहिए। है कौन? ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है, हमारे लिए आया है, हमें बना रहा है, हमारी सच्चाई वो उसको खींचती है, क्योंकि वो खुद परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रूथ, सत्य है ना, तो सत्य को सत्यता खींचती है। फिर से आती हूं लेकिन पर, लेकिन ये सब कुछ आपको समझ करके प्रैक्टिकल करना होगा, फल कर्म का है, प्राप्ति कर्म की है, बीज मेरे पास में है लेकिन बीज को अगर धरती में नहीं बोया फल मिलेगा? कितना भी महंगा क्यों ना हो, आप उसको संभाल करके 10 वर्ष तिजोरी में रखो, अरे मेरे पास तो इतना महंगा बीज है, वैल्यू नहीं। ऐसे ही आप इतना ऊंचा ज्ञान है, आप बार बार लोगों को सुनाओ, अरे बाबा तो क्या कहता है, पर तिजोरी में बंद कर दिया है, उसे कर्म में लाओ, बीज को धरनी में बो। फिर आप इस रूहानी पर्सनालिटी का इतना अच्छा अनुभव करेंगी, आपको किसी के भी सुरक्षा की जरूरत नहीं रहेगी, स्व की रक्षा आप स्वयं करेंगी। हम स्वरक्षक हैं, साथ साथ विश्व रक्षक हैं। आज वो दुनिया वाले कितने कराटे सिखा ले, कितने नियम बना दे, उनकी रक्षा है ही नहीं, सुरक्षा कहां भी नहीं है। तो अब आप लोग जब भी घर से बाहर निकलो, हमेशा ये सुरक्षा कवच पहन करके निकलो, मैं शिव शक्ति। आप हमेशा सेफ रहेंगे। लगता है आपको ये हम कर सकते हैं, लेकिन अभी से अभ्यास शुरू करो। अभ्यास प्रैक्टिकल में लाना शुरू करो, क्योंकि यहां का तो वातावरण अच्छा है और आप भी सिर्फ भट्टी के लिए आए हैं, तो मन भी शांत और एकाग्र है, उसे सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वहां जाने के बाद बदल जाएगा अगर यहां अभ्यास नहीं किया तो। शुरू करते जाओ, हूं शिव शक्ति तो शिव शक्ति, चलते हुए अनुभव करो। आपको हर रोज सोमान दिया जाता है, उस सोमान को आप यूज करते हो, अभ्यास में लाते हो। आज का सोमान क्या है? एक व्रता। अब एक व्रता को सोचो, उसको ही अगर पक्का कर दो तो वही हुआ ना। कोई नहीं है, मैं एक व्रता हूं, ऐसा व्रत है। तो ऐसे व्रतधारी आप सभी आत्माएं, बाबा की श्रेष्ठ संकल्पधारी बच्चियां, जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगी, बाबा की और दादियों की आशाओं को पूर्ण करेंगी। ओम शांति। आप में से किसी को कुछ पूछना है इस विषय में? विषय क्लियर हुआ? हुआ पीछे बहने, ठीक है? तो बस अभी अभ्यास शुरू करेंगे। गुण में ज्ञान कैसे भरे? कहा ना कि गुण है हमारे में, लेकिन उसमें ज्ञान भरे तब हमारा रूहानी व्यक्तित्व बनेगा। ज्ञान है समझ, ज्ञान समझ है ना। मेरे में मिठास का गुण है, मैं सबके साथ बड़े मीठे रूप से बात करती हूं, लेकिन वहां मुझे ये समझ होनी चाहिए ज्ञान क्या कह रहा है, उसमें ज्ञान का प्रयोग भी हो। मेरे आपके कल्याण के लिए मैं अगर कोई बात बोलती हूं और वो आपको नहीं अच्छी लगती है, तो आपको अच्छा लगाने के लिए मैं मीठा बोल रही हूं। कई बार क्या होता है, मुझे मालूम है कि इसका ये संस्कार है, लेकिन मैं बोलेंगी तो इसको खराब लगेगा, तो खराब लगेगा तो उसकी जगह मैं उसको अच्छा लगाने के लिए वो बोल रही है। तो मैं अच्छी हूं, मैं मीठी हूं, मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा है, तो मैंने उस व्यवहार को अच्छा रखने के लिए उसको नहीं बोला। लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि वो बात उसको इशारे में मुझे देनी चाहिए, वहां मुझे ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी रीति से, जैसे मीठे स्वभाव में भी ज्ञान युक्त अगर हम रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो कोई भी हमारा उसका फायदा नहीं ले सकता है, मिसयूज नहीं कर सकता है। समझ पूर्वक कर्म, गुण में गुण को जब आप प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हो, तब ज्ञान युक्त अर्थात समझ पूर्वक हम उसको करें, ठीक है। चलो अभी आपका दूसरा क्लास होगा, योग होगा। ओम शांति।
कदम बढ़ा प्रभु मंदिर। शुभ